الحمد لله وكفى وسلام على عباده الاصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ہمارے بھائی نے جو ابھی ماضی میں ماشاءاللہ جو مضمون بیان کیا بہت ہی عجیب و غریب مضمون ہے. سلطان محمود رحمت اللہ علیہ جو کہ محمود غزنوی بھی کہلاتے ہیں, اور ان کا یہ جملہ تاریخ میں کہ میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا پسند کروں گا. لہذا وہ سومنات کا بت کہ جس کو نہ توڑنے کے لیے اس کے پجاریوں نے قدموں میں ایک بہت بڑی دولت رکھی, اس پر یہ جملہ سلطان محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے جب بت کو توڑا تو اس سے بڑھ کر دولت اور نعمت مل گئی. ہم پیارے مرشد اور شیخ رحمت اللہ علیہ اور ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتہم کا خانقاہ میں یہی سبق ہے کہ غیر اللہ سے نظر بچا کر اپنے دل کو توڑو. تو جس دولت کی توقع نظر ڈال کر تم سمجھتے ہو کہ ملے گی, وہ دولت ملے گی جو وہم و گمان میں بھی نہ آئے گی. یہی سبق خانقاہ کا سبق ہے. لہذا سلطان رحمت اللہ علیہ جن کا تعارف سومنات کے ساتھ ہے, دیہات کے ایک اسکول میں ایک انسپیکٹر پہنچا جو اسکول کا انسپیکٹر ہوتا ہے اس وقت, اور وہ اسکول کا دورہ کر رہا تھا تو کلاس میں گیا, وہاں کلاس کا جو ٹیچر تھا وہ موجود نہیں تھا. تو اس نے ایک بچے کو کھڑا کیا اور کہا بتاؤ کہ سومنات کا بت کس نے توڑا. بچے نے کہا کہ سر میں تو کل آیا ہی نہیں تھا, مجھے کیا پتا. اس نے کہا اچھا چلو تم بیٹھو, دوسرے کا بتاؤ. اس نے کہا سر یہ شیدہ بہت شرارتی ہے, یہ ہر چیز توڑتا ہے, یہ اسی نے توڑا ہوگا. اتنی دیر میں کلاس کا ٹیچر استاد آ گیا, اس نے کہا یہ آپ کے بچے کیسے ہیں. ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ سومنات کا بت کس نے توڑا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کل آیا نہیں تھا, دوسرا کہہ رہا ہے شیدے نے توڑا ہوگا. اس نے کہا سر رہنے دے, بچے ہیں کھیل کود میں ٹوٹ گیا ہوگا. تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے یہ غلام ایاز کا یہ قصہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ, اور وہ جو ایاز تھا بادشاہ اس سے محبت بہت کرتا تھا. تو دوسرے جو عمرا اور وزرا تھے وہ حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس سے محبت کیوں کرتا ہے. بادشاہ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا تو اس نے ایاز کے عشق کو اور محبت کو اور اس کی خدمت کو دکھانے کے لیے ایک امتحان لیا کہ اپنے خزانے کا سب سے قیمتی موتی وہ دربار میں لا کر رکھا اور ایک وزیر کو بلایا کہ اس موتی کو توڑ دو. وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں, اتنا قیمتی موتی اس کو توڑیں और आपको आपके खजाने को इससे महरूम करें, मैं ये नहीं कर सकता। बादशाह ने उसको इनाम दिया, पर्चा और मुश्किल हो गया। इस तरह दो तीन, यहां तक कि हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 65 वजीरों को बुलाया और तमाम जी यानी हजरत वाला दावत बरकातुम फरमाते हैं पैंट, पंजाब में कहते हैं ना पैंट, बर वजन एंट जी। हजरत वाला की इस मजा यानी दो लड्डू का मजा मिला। हजरत वाला दावत बरकातुम ने फरमाया, यानी हजरत के अल्फाज फरमाए कि वालिद साहब ने फरमाया था। तो अब वो 65 के 65 रो ने किसी ने नहीं तोड़ा, सबको बादशाह ने इनाम दिया। बादशाह ने अयास को बुलाया और अयास को कहा कि इस मोती को तोड़ दो। अयाज ने फौरन पत्थर उठाया और मोती पर मारा और मोती चिकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। पूरे दरबार में शोर मच गया, ईचे बेबाकीस्त वल्लाह काफिरस्त, कि देखो बादशाह सलामत आपका ये गुलाम नाशुकरा है, काफिर माने नाशुकरे के हैं, कि अल्लाह ताला की खाकर अल्लाह को ना मानना ये कितनी बड़ी नाशुकरी, और हमको अपने ईमान पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से, अपने करम से हम सबको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तो कहा कि कैसा निडर है, ये बेबाकी है इसकी कि बादशाह की इनायात और मेहरबानियां, बादशाह सलामत आप इस पर मेहरबानी फरमाते थे, ये देखिए इसने आपको आपके खजाने को इतने कीमती मोती से महरूम कर दिया। अब बादशाह ने कहा कि अयाज तुम इन वजीरों का जवाब दो। वहां रुमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अयाज ने कहा, गुफ्त अयाज ए महतराने नामवर, अयाज ने कहा कि ए मुअज्जज वुज़रा, माय रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, ए मुअज्जज वुज़रा काबिल सद एहतराम, एक बात तो बताइए, अम्र शह बेहतर बकीमत या गोहर, के शाही हुक्म ज्यादा कीमती है या मोती ज्यादा कीमती है। बादशाह हुक्म दे रहा है, हमने तुमने मोती को तो न तोड़ा लेकिन बादशाह के हुक्म को तो। इस बात को बयान फरमा के हजरत वाला नसीहत फरमाते हैं कि देखो एक तरफ ये हसीन है और इन हसीनों को देखने के तकाजे हैं, गुनाह का तकाजा है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म है कि मत देखो। ये दिल भी तो हमें अल्लाह ताला ने ही दिया है, अगर दिल को खालिक़े दिल पर फिदा कर दे तो उसका इनाम यह है कि अहले दिल कहलाएंगे, और अगर दिल को न तोड़ा, किसी हम दिल को आबाद रखेंगे, तो हकीकत में वो दिल की बर्बादी है, तबाह बर्बाद हो जाएगा। और अल्लाह ताला को राजी और खुश करना यह है कि दिल को तोड़ दे तो उस टूटे हुए दिल को अल्लाह ताला ठिकाना बना लेगा, वो मस्कन बन जाएगा। फिर वही शेर का मजा जो हमारे मोहतरम भाई ने पढ़ा था हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का, वो शाहे दो जहां जिस दिल में आए, वो शाहे दो जहां जिस दिल में आए, मजे दोनों जहां से बढ़ के पाए। आगे मारूमी रहमतुल्लाह अलैह और नसीहत फरमाते हैं, फरमाते हैं कि जिस तरह से बादशाह ने के हुक्म पर अयाज ने मोती को तोड़ा, उसी तरह बर जुजाजाए दोस्त रा संगे दोस्त बिजन, ये जो हमारा दिल है मिसल आईने के है, हमारी ख्वाहिशात मिसल आईने के शीशे की कांच की है, यानी बहुत ही हसास और कमजोर है और साफ और शफाफ है, अब और सोचे कि कांच का और पत्थर का कोई ताल्लुक है, कांच और पत्थर। लेकिन फरमाते हैं कि बस जुजाजा ए दोस्त रा संगे दोस्त बिजन, कि दोस्त के दिए हुए आईने को दोस्त के दिए हुए पत्थर से तोड़ दो। यानी हराम ख्वाहिश पैदा हुई है, गुनाह का तकाजा पैदा हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उसको तोड़ दो। बर्ज जा जाए दोस्त रा संग दोस्त बिजन, और गौहरे हक रा ब अम्र हक शिकन। कि अल्लाह ताला ने अगर कोई मोती तुम्हें अता फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस मोती को तोड़ दो, तो जब मालिक ये फरमाए कि मोती मेरा है इसको तोड़ दो, बात अयास की देखिए ना, बिल्कुल अक्ल की बात है कि जब बादशाह का मोती है, मालिक है बादशाह, वो बादशाह फरमा रहा है, बादशाह कह रहा है कि मेरा मोती है इसको तोड़ दो, तो गुलाम का तो काम है उसको तोड़ दे, वो तो एक सेकंड की देर ना लगाए। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत का शेर है कि क्या खबर थी कि खूं बहा है आप, क्या खबर थी कि खूं बहा है आप। खूं बहा खून की कीमत, यानी जब किया जाए तो मकतूल के वरासा को खून की कीमत दी जाती है, और ये खूं बहा है, इसको खूं बहा। तो क्या फरमाते हैं, बड़ा अजीब शेर है, अल्लाह ताला इसकी हकीकत हमारे दिलों में उतार दे, कि क्या खबर थी कि खूं बहा है आप, हाय लम्हात गफलत दिल के। यानी जो वो वक्त वो लम्हा कि जिस वक्त में हम नजर बचाकर और गुनाह से बच के अगर अपने दिल को तोड़ते, हमारे दिल का तो खून तो होता, लेकिन उसके उस खून के बदले में जो कीमत मिलती वो अल्लाह ताला की जात मिल जाती। इसी की तरफ फरमाए, कौन सा वो लम्हा है कि जिसकी हमें खबर होती, इसी की तरफ फरमाए कि क्या खबर थी कि खूब हाँ हैं आप। कि हमें ये अंदाजा होता कि ये जिस हराम ख्वाहिश पर अमल करके हम समझ रहे हैं हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉय नहीं है, एंड ऑफ जॉय है, खुशी जो है बर्बाद है, इंतहा हो गई, खत्म हो गई। लिहाजा इन्होंने जो अशार पढ़े थे उसमें एक शेर और भी था, उसमें हजरत का एक अजीब मजमून है, शेर के अल्फाज तो पूरे याद नहीं लेकिन जो मजमून है, हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो एक ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, जब उस ख्वाहिश पर अमल करते हैं कि जी ख्वाहिश पर अमल करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो खुशी मिलेगी, और अगर उस ख्वाहिश पर अमल ना किया जाए तो ख्वाहिश पर अमल ना करें फिर वो हसरत कहलाती है। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो जब ख्वाहिश पैदा हुई और उस ख्वाहिश पर अमल करने की वजह से हमें खुशी मिली, उसका नाम हजरत ने इशरत रखा, और जब वो ख्वाहिश पर अमल ना किया तो उससे हसरत पैदा हुई, उस ख्वाहिश पर अमल ना करने से वो हसरत है। फरमाया देखो इशरत बेवफा है और हसरत बावफा है, ये हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं। आप हजरत की किताबों में तो मुझे याद नहीं कि कहां है, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं, और दूसरे हजरत भी इसके माशाल्लाह गवाह हैं कि वो ख्वाहिश जिस ख्वाहिश अमल किया वो इशरत खुशी मिली ना, कि मैंने खुशी ले ली उसके बाद, जी मेरा दिल चाहता है मैं खुश हो गया, वो इशरत मिली लेकिन वो बेवफा है, क्यों, दिल से चली गई। और जो ख्वाहिश पर अमल ना किया वो हसरत बनी, हसरत दिल की दिल में रह गई। लिहाजा एक शेर ये छूट गया था जिसमें हजरत ने इस मजमून को बयान फरमाया, ये दो शेर का मजमून है हजरत के, कि इशरत बेवफा है और हसरत बावफा है, कि वो ख्वाहिश जो दिल में रह गई वो वफादार है, क्योंकि वो ख्वाहिश हमारे पास है, जो हमारे पास है वो वफादार है, जो चला गया वो बेवफा है। बस फरमाया फिर खुद ही फैसला कर लो कि तुम चाहते हो वफादारी, वफादारी चाहते हो, इस ख्वाहिश पर अमल करोगे तो इशरत पैदा होगी जो बेवफा है, और अगर उस ख्वाहिश पर अमल ना करोगे हसरत बनेगी, वो दिल की दिल में रह जाएगी। और फिर उसका इनाम क्या मिलेगा, उसका इनाम ये मिलेगा, दागे हसरत से दिल सजाए हैं, दागे हसरत से दिल सजाए हैं, तब कहीं जाके उनको पाए हैं। दागे हसरत से दिल सजाए हैं, तब कहीं जाके उनको पाए हैं। और कल्ब में जिसके जब वो आए हैं, अपना आलम अलग सजाए। हजरत इशारा फरमाते थे, ये हजरत का मैं कदा है, हजरत वाला दामत बरकातुम का है कि ये सब ये अपना आलम अलग सजाए। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ताला अपने हर आशिक को अलग आलम अता फरमाते हैं। और उसकी दलील क्या है? मौतुल आलिम मौतुल आलम, है ना, आलिम की मौत आलम की मौत है। लिहाजा वो एक दलील, अल्लाह ताला ये इन आशिकों को एक अलग आलम अता फरमाते हैं। उनका फरमाया करते, उनकी जमीन अलग, उनका आसमान अलग, उनका सूरज अलग, और उसके उसके बाशिंदे भी अलग होते हैं। लिहाजा कल्ब में जिसके जब वो आए हैं, अपना आलम अलग सजाए हैं। मंजिले कुर्ब यूं नहीं मिलती, जख्म हसद हजार खाए हैं। काम बनता है फजल से अख्तर, काम बनता है फजल से अख्तर, फजल का आसरा लगाए हैं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।